राम तीर्थ जब अमेरिका से प्रवचन करके लौट रहे थे तो उनको प्रमाण पत्र दिए गए थे। अखबारों में उनके बड़े प्रशंसा, भारत के फिरस्ता है, ऐसे महान योगियों के लिए। सुना था कि भारत योगियों का घर है, लेकिन एक योगी का दीदार करते ही देशवासियों को पता चला है कि वास्तव में स्पिरिचुअल लाइफ कुछ है। उस समय प्रेसिडेंट, अमेरिका का प्रेसिडेंट रूजवेल्ट रामतीर्थ के दर्शन करने आए। जब अमेरिका का राष्ट्रपति रामतीर्थ के दर्शन करने आए तो अखबारों ने और संस्थाओं ने रामतीर्थ की वाणी पर ध्यान दिया और वो लोग जरा कुछ लाभविंद हुए। तो जब विदाय हो रहे थे तो विदाय समारंभ गोष्ठों का विदाय समारंभ में कईयों ने, संस्थाओं ने अपने तरफ से रामतीर्थ को प्रमाण पत्र दिए कि तुम वास्तव में महान संत हो, फिरस्ता हो, ये हो ये हो। बड़ा बंडल दिया। स्टीमर चला तो रामतीर्थ ने उठाकर वो पूरा का पूरा प्रमाण पत्रों का जो गठरी था वो दरिया में दे दिया, दरिया में फेंक दिया। अरे राम बादशाह, तुझसे तो सारी सृष्टि प्रमाणित होती है और तू ये प्रमाण पत्र लेकर कहां फिरेगा? राष्ट्र रुजवेल जैसे राष्ट्रपति जिनके चरणों में आते, ऐसे अखबारों में प्रशंसा, इतने सारे प्रमाण पत्र मिले। लेकिन राम तीर्थ को नित्य अनित्य दोनों को देखने वाले सत वस्तु का बोध हो गया था, इसलिए इन प्रमाण पत्रों को तो तुच्छ समझा, बंडल का बंडल दरिया में दे दिया। अरे राम बादशाह, तेरे से तो सारा विश्व प्रमाणित होता है, तू प्रमाण पत्र किसका लेकर फिरेगा? लेकिन हम लोग इतना बुद्धि में और इतने संस्कारों में उलझ गए कि छोटा मोटा ये स्टूडेंट लाइफ से लेकर ये सर्टिफिकेट लिया, वो लिया, वो प्रमाण पत्र लिया, वो लिया, वो लिया, और फिर अपने को प्रमाणित करते फिरेंगे कि हम ये हैं। लेकिन फिर भी तुम धोखा कर रहे हो अपने से। तुम इतने बड़े कितने भी प्रमाण पत्रों से बड़प्पन को पकड़ोगे तो तुम्हारे बड़प्पन की सीमा होगी। हकीकत में तुम्हारा बड़प्पन असीम है। ये तो तुम्हारी मति, और मति तो हर जन्म में बदलती रहती, जो बदल रही है, जो वैश्या है, वैश्या को पुरस्कार मिले और वो सम्राट बोले मेरे पुरस्कार हैं तो बेवकूफ है कि नहीं? वैश्या को कोई पुरस्कार मिला और फिर सम्राट बोले कि मेरे को पुरस्कार मिला तो सम्राट सम्राट है क्या? बेवकूफ है। तो बुद्धि तो एक वैश्या है, ये तो बदलती रहती है। इसको ही पुरस्कार मिले, इसी को प्रमाण पत्र मिले और उसके प्रमाण पत्र हमारे हैं, तो ये सम्राटों का सम्राट जीव बेचारा कितना बेवकूफ हुआ। हकीकत में जीव भी नहीं, हकीकत में तो चेतन है। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मोहयन्ति जंतवा, कृष्ण ने कितना सत्य स्पष्ट कर दिया। अज्ञान से ज्ञान आवृत हो गया, इससे मोहित होकर बेचारे जीव भटक रहे। अर्जुन को भी तो मोह था, अर्जुन जैसी ऊंचाई वाला व्यक्ति बुद्धिशाली था, फिर भी जिज्ञासा का अभाव था। कृष्ण के उपदेश से जिज्ञासा जगी, फिर शरणागत हुआ, तत्व ज्ञान का उपदेश मिला, तब सारे दुख दूर हो गए। और तो कोई धड़ाका बढ़ाका तो हुआ नहीं, केवल नासमझी मिटी। और अर्जुन बोलता है नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, कृष्ण तो श्री कृष्ण तो साथ में थे और जो प्रॉब्लम था वो तो सामने ही प्रॉब्लम था ही, लेकिन उपदेश के बाद सारे प्रॉब्लम मिट गए, क्योंकि अपनी अमरता का बोध हो गया। प्रॉब्लम तो इस शरीर तक है, मन तक है, इंद्रियों तक है, बुद्धि तक है, लेकिन अपने स्वरूप तक कोई प्रॉब्लम पहुंच नहीं सकता। प्रॉब्लम हैव बीन द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम हो जाए, मृत्यु की मौत हो जाए अगर तुम्हारे नजीक आए तो मृत्यु भी तुम्हारे को छू नहीं सकती, परलय भी तुम्हारे को छू नहीं सकती, तुम ऐसी चीज हो। अभी तो जरा सा मोहगवारी नड़ती है, जरा सा अपमान नड़ता है, जरा सा मक्खी और मच्छर भी नड़ता है, अरे परले भी नहीं नड़े, तुम ऐसी चीज हो। बोले फिर ये मक्खी मच्छर प्रॉब्लम मेरे को क्यों नड़ते? भाई देखो, म्युनिसिपैलिटी का कचरे के ढगले पे तुम जाके बैठो, फिर बोलो मक्खी मच्छर क्यों नड़ते हैं, तो रह है ही। ऐसे देह तो म्युनिसिपैलिटी का ये पांच भूतों का कचरा है। इस देह को मेहमानोगे तो प्रॉब्लम नड़ेंगे, प्रॉब्लम लगेंगे। हकीकत में ऐसे देह तो तुमने कई बनाए कई छोड़ दिए। अभी तो थाली में रोटी सब्जी कचुंबर दही चटनी चावल ये वो है, खाया तो मैं बन गए, आए तो पांच भूत का म्युनिसिपैलिटी का मास। अभी तो थाली में आ शू के रसोई है, અને એ રસોઈ જમ્યા પછી એવું એસે હોતા હૈ કે ઓર કુછ હોતા હૈ? રસોઈ રસોઈ કા કે દાલ રોટી કા હી તો સ્ટ્રક્ચર હૈ, જો દાલ રોટી સબ્જી હૈ ઓર વિટામિન્સો કા છોરા બહોત જથા હૈ ઉસકો મેં માનતે। કિતના બઢિયા જ્ઞાન હૈ લોકો કે પાસ, ઉસકો મેં માન કે ફિર કોઈ કિધર દોડ રહા હૈ, કોઈ કિધર દોડ રહા હૈ, કોઈ કિધર દોડ રહા હૈ। एक भूला दूजा भूला, भूला सब संसार, विण भूलिया एक गोरखा जिसको गुरु का आधार। गुरु का मतलब नहीं कान फूंक दे, कंठी बांध दे, टीला कर दे, कन्या मन्या कुर तुम हमारे चेले हम तुम्हारे गुर, दक्षिणा धर तू चाहे तर चाहे मर। नहीं नहीं, गुरु का मतलब है गु माने अंधकार, रू माना प्रकाश। आपके शुद्ध बुद्ध स्वरूप का जो अज्ञान है उसको दूर करके आपको अपनी महिमा में जगाने का जो प्रयत्न करते हैं, जो जगाने को चाहते हैं, उन महापुरुषों का नाम गुरु है, उनको सदगुरु कहते हैं। कंठी गुरु होते हैं, विद्या गुरु होते हैं, संसार के छोटे छोटे ज्ञान देने वाले गुरु होते हैं, लेकिन सत्वस्तु का ज्ञान देकर सदा सदा के लिए मुक्त कर दे उसको बोलते सदगुरु। उनकी वाणी में बड़ा ओज होता है। सदगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का हरे भरम की कोट। भरम डाल दिए गए ना, तुम हिंदू हो, तुम पंजाबी हो, तुम मारवाड़ी हो, तुम बेटे हो, तुम पति हो, तुम पत्नी हो, तुम छोकरे हो, तुम पर हमारा अधिकार है, दुनिया भर अधिकार, दुनिया के अधिकार हम पे बैठे, तुम्हारा ये कर्तव्य है, देश की सेवा कर्तव्य है, ये सारे कर्तव्य अल्प संख्या में पूरे करते करते आदमी मर जाता है। हकीकत में मेन कर्तव्य है अपने आत्मा को जानो, और अपने आत्मा को जाना तो उसने राष्ट्र की सेवा कर दी, विश्व की सेवा कर दी, 21 कुलों को तार दिया, सारे पितरों को तर्पण कर दिया उसने, ऐसा काम है। नातम तेन सर्वतीर्थम, दातम तेन सर्वदानम, कृतम तेन सर्वयज्ञम, येन क्षणम मनः ब्रह्म विचारे स्थिरम कृतम। एक क्षण के लिए जिसने उस अपने शुद्ध सत्वस्तु नित्य अनित्य से पर, नित्य अनित्य का प्रकाशक, उस अपने मैं में जिसने डेरा डाल दिया, उसने सारे पितरों को तर्पण कर दिया, पितरों का उद्धार कर दिया, 21 कुलों का उद्धार कर दिया, और देश में जहां रहेगा वहां उसको छूकर जो हवाएं जाएगी वो भी देश की सेवा करेगी, देशवासियों की सेवा करेगी। सच्ची सेवा तो ब्रह्मवेता ही कर सकते हैं, दूसरे लोग तो मानी हुई कल्पित भोग वासना बढ़ाएंगे और क्या करेंगे, भोग की सामग्री बढ़ा के देंगे और तुम शरीर हो, तुम फलाना हो, ये भूल भुलैया मजबूत करेंगे और क्या सेवा करेंगे। सुधारक बेचारे समझते हैं कि भगवान ने सृष्टि बनाई और कहीं कोई कमी रख दी, हम सुधारा करके सब ठीक कर देंगे। अब उनके सुधार से ठीक होता तो इतनी परेशानी बढ़ती नहीं। सुधारक के पास भी जितना ज्ञान होगा वही तो सुधारा करेगा, जब तक आत्मज्ञान नहीं है तो अहम के हाथ में तराजू होगी उसके सुधारे की। अहम को पोषने का, ओ साम्यवादी लोग बोलते हैं कि जिसके पास दो मकान है एक छीन लो, जिसको नहीं है वो दे दो, बात ठीक है चलो, फिर और क्या करे, जिसके पास दो गाड़ी है तो एक गाड़ी ले लें, जिसके पास नहीं उसको दे दे, करे हाँ है ये साम्य अवस्था आना। अच्छा तो जिसके पास दो भैंस है उसकी एक भैंस ले लें, जिसके पास नहीं उसको दे दें, बोले नहीं ये ठीक नहीं है क्योंकि दो भैंस तो मेरे घर में भी है। अपने ऊपर आया तो वहां साम्यवाद नहीं लगता, दूसरों को साम्य करके भी आप तो विषम होना चाहता है ना, लीडर बनना चाहता कि नहीं। साम्यवाद, ए बराबर वो बराबर, सबको बराबर करके सबके ऊपर कुर्सी तो तुम्हारी चाहिए। श्री कृष्ण का साम्यवाद ही है, बाहर से तो विषमता रहेगी, तुम्हारे अंगों में भी विषमता है, शरीरों में भी विषमता है, स्त्री पुरुष के शरीर में भी तो विषमता, बाहर से विषमता रहेगी, लेकिन विषमता ये काल्पनिक है, प्रतिभासिक है। विषमता रहते हुए भी अंदर में जो सब में सम तत्व है उसका बोध हो जाने पर पूर्ण शांति, पूर्ण जीवन। देखो परीक्षित महाराज का जीवन अपने ढंग का है, जनक का अपने ढंग का है, सुखदेव जी का अपना ढंग का है, विवेकानंद का अपने ढंग का है, रामकृष्ण का अपने ढंग का है। बाह्य तो विषम है, लेकिन अंदर से जो विवेकानंद का अनुभव है वही रामकृष्ण का है, वही रमण महर्षि का है, वही ज्ञानेश्वर महाराज का है, वही कृष्ण का है, वही कबीर का है, वही महापुरुषों का है, और वही आत्मा तुम्हारा है। आत्मा में सब सम है, शरीर तो विषम होंगे। एक मॉडल शरीर का दूसरे से बराबरी नहीं कर सकेगा, साम्यवाद रहेगा कैसे? बधा चेहरा एक जेवा थी जाओ, प्रकृति में तो विषमता रहेगी, व्यवहार में विषमता रहेगी, लेकिन अंदर में ज्ञान में विषमता नहीं होनी चाहिए। व्यवहार में विषमता का मतलब ये नहीं कि शोषण किया जाए अथवा नोच लिया जाए समाज के हिस्से को, नहीं। अंदर में जब आत्मभाव होता है ना, तो फिर सोचने के विचार नाश हो जाते हैं। ऐसा कोई योगी नहीं मिलेगा जिसने समता का अनुभव किया हो और शोषण करता हो, नहीं, उसके द्वारा पोषण ही हुआ है। और ऐसा कोई भोगी नहीं मिला होगा जिसने दूसरों का शोषण नहीं किया हो। भोगी दूसरों का शोषण किए बिना रह नहीं सकता, कोई भी भोग बिना शोषण के उपलब्ध नहीं है। भोगी शोषक होता है, भले अभी आपका पोषक दिखे लेकिन वो शोषण करे। वो भोगी अपना भी शोषण करता है, दूसरों के जो संपर्क में आता है उसका भी शोषण करता है, और योगी अपना भी पोषण करता है और उसके संपर्क में जो आते हैं उनका भी पोषण हो जाता है। इसीलिए हजार प्रयत्न करके भी आत्मवेता योगियों का संग करना चाहिए। जो जो स्वयं पोषित हैं वो दूसरों को पोषित करेंगे, जो स्वयं को शोषित करते हैं वो तुम्हारे को पोषित कैसे करेंगे यार? जो स्वयं अंधेरे में टकरे खा रहे हैं वो तुमको उजाला कैसे दिखाएंगे? स्वयं का मैं का ज्ञान नहीं है उन विचारों को, स्वयं के नित्य जीवन का, नित्य सुख का, सत्यम ज्ञानम अनंतम का गंध नहीं है तो तुमको कैसे देंगे? और जब तक सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म का रस नहीं मिला तब तक संसार की भट्ठी का दुख दूर नहीं होता। संसार भट्ठी है, इसकी शुरुआती भट्ठी से होती है। रज और वीर्य कितना कोमल होता है, माता की गर्भाग्नि में रंधता है, पकता है। आप लोग तो डॉक्टर लोग हैं, समझ सकते हैं कितना गर्भाग्नि का सेक मिलता है, तब तो ये बोन्स बनते हैं, हड्डियां बनती है, खोपड़ी बनती है, और उधर लटकता है। एक लड़का MBBS कर रहा था, साधक था, मैंने कहा MBBS करो ठीक है, MD करो, हमारा इनकार नहीं है, लेकिन फिर जिससे सब किया जाता है उसको जान लो। रामकृष्ण भी ऐसा बोलते थे, मैं भी ऐसे बोलता हूँ। बोले स्वामी जी मैं उसी लिए पढ़ रहा हूँ, MD भी करूँगा। अभी बुद्धिशाली था तो डॉक्टरी विद्या पढ़ने के बाद ये सब ऑपरेशन, ये मेढक चीरना, ये सब देख कर, ऑपरेशन वॉपरेशन करेंगे तो सब दिखेगा नहीं तो जरा वैराग आ जाएगा, और हृदय में जो भगवान बैठा है उसको भी खोल के देख लेंगे। फिजिकल बॉडी से, फिजिकल आंखों से अगर भगवान दिख जाता तो वेद शास्त्र और गुरुओं की जरूरत ही नहीं, काट चीर के एक आदमी को सब लोग देख लेते। नहीं दिखता, कई सर्जन मिलकर एक आदमी का वो एक्सरे करें और फिर उसका ऑपरेशन करके फेफड़ों को, हृदय को एक पुर्जा अलग रख दें, फिर भी नहीं बता सकते कि कौन से हिस्से में इसने इनसे प्यार किया होगा, घृणा भी की होगी, भय भी रहा होगा, लेकिन कहाँ है? और फिजिकल शरीर में तो दिखेगा नहीं स्नेह, स्नेह का कोई स्पेयर पार्ट नहीं दिखेगा, फिर भी जीवन में स्नेह भी होता है, भय भी होता है, घृणा भी होता है। उर्मिया होती है ना, उर्मिया कौन से स्पेयर पार्ट में होती? ऋषि दयानंद ने सुना था कि कुंडलनी जागृत होती है तो साधना अपने आप होने लगती, और 7 चक्र होते हैं। उनको वहां के क्या पता, जैसे और पूजा पाठ में पंडों ने कुछ एकड़म तिगड़म लगा दिया, ऐसे ही कोई योगियों ने ऐसा कर दिया होगा, तो तो ऋषि दयानंद जैसा आदमी काशी में, कई लोग गंगा में मुर्दा परवान कर देते, वो छुपके मुर्दा उठा के जंगल में ले गए, उसको ठीक काट कूट के उसका पुर्जा पुर्जा देखा, फिर उन्होंने लिखा कि सात चक्कर बकर कुछ नहीं होता है, कुंडलनी मुंडलनी कुछ नहीं होती। ऋषि दयानंद जैसे आदमी थे, उनको पता नहीं कि ये स्थूल शरीर का विषय नहीं है, ये प्राणमय कोष में है, अन्नमय कोष में नहीं देखेगा। कुंडलनी मुंडलनी जैसी चीज नहीं है, कैसे देखो, योगियों के पास जाकर देखो, प्राण उत्थान होता है, चक्र विकसित होते हैं, सेक्सुअल चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र है, मणिपुर चक्र है, चक्र नाम रखा है, हकीकत में वो होते हैं ऐसे केंद्र कुछ गलफड़े सिंधी में, उनको चक्र नाम दिया क्योंकि वहां से और नाड़ियों की शाखाएं जाती, सहस्त्र सार चक्र है मस्तिष्क में, योगिक अलंकारिक भाषा, लेकिन ये कुंडलनी वगैरह जागृत होती है, प्राण उत्थान होता है, सुख का अनुभव होता है, दुख का अनुभव होता है, आवेश का अनुभव होता है। स्थूल शरीर को खोजो तो कहां सुख है, कहां आवेश है, ये तो अपना पांच बॉडी है, ये फिजिकल बॉडी, इसको अन्नमय कोष बोलते हैं, इसके अंदर प्राणमय कोष है, इसके अंदर मनोमय कोष है, तो जितना अंदर का कोष उतना आत्मा की नजीकी, इसीलिए मनोबल जिसका बढ़िया होता है उसको फिजिकल बीमारी असर नहीं करती, और होती है तो चली जाती, और मनोबल जिसका वीक होता है और बीमारी का रिपीटेशन करता है उस पर तुम लोगों का भी ज्यादा जोर नहीं चलता। आप लोग तो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, तुम भी कितना ही पेशेंट को ले आए हैं कि ये पेशेंट को दवा असर नहीं करती, क्यों असर नहीं करती, कि मानसिक है, तो मानसिक रोग को अगर पकड़ रखा उसने, रोगी ने मैं रोगी हूं ये पकड़ रखा है, और डॉक्टर की दवाई से कुछ नहीं होगा ये उसने पकड़ रखा है, तो डॉक्टर दुनिया भर की दवाइयों का भाव जोर मार दे, कुछ नहीं होगा। पहले तो उसको डॉक्टर की औषध में विश्वास होना चाहिए, उसकी अपनी सम्मति जब तक रोगी की नहीं होती तब तक हकीम डॉक्टर वैद्य और संत उसको ठीक नहीं कर सकते, अपनी सम्मति चाहिए उसको, ठीक है ना। इसीलिए ऐसे भावना प्रधान योगी को ऐसे ही जांचना पड़ता है, ऐसे ही तपासना पड़ता है कि डॉक्टर साहब बहुत ध्यान आप हमारा ऊपर, ठीक है ना, ये डॉक्टर साहब की दवा से मेरे को मिट जाएगा, उसके अंदर से सम्मति होनी चाहिए। तो अन्नमय कोष से प्राणमय कोष अंदर है, प्राणमय कोष से मनोमय कोष अंदर है, मनोमय कोष से विज्ञानमय कोष अंदर है, विज्ञानमय कोष से आनंदमय कोष, ये पांच परतें। तो डॉक्टरी इलाज तो पहली परत तक चलता है, अगर डॉक्टरी विद्या से सब कुछ हो जाता तो फिर डॉक्टर बेचारे सत्संग में क्यों जाते, डॉक्टर माला क्यों लेते, डॉक्टर भगवान को क्यों मानते, बोले नहीं मानते, नहीं मानते तो और अशांत रहेगा, नहीं मानेगा तो और अहंकारी बनेगा। मानना एक बात है, मानता है, मान्यता में संदेह बना रहता है, ज्ञान में संदेह नहीं होता है, ठीक जान लिया ने फिर संदेह नहीं होता। मान लो कि मेरे हाथ में अठन्नी है, आप मान लेंगे फिर भी संदेह उसी समय होगा, क्या पता है कि नहीं है? तुरंत संदेह रहेगा और बोधा बोधा आवाज रहेगा कि हाँ महाराज जी कहते हैं अठन्नी है हाथ में, चलो मान लिया, जेब में हाथ डाला, भैया देखो मेरे हाथ में अठन्नी है, मान लिया, विश्वास कर दिया। लेकिन विश्वास की अपेक्षा ज्ञान ज्यादा पुष्ट होता है, विश्वास किया महाराज का हाथ में अठन्नी है, ये मुट्ठी बंद है, मैंने जेब में हाथ डाल दिया, ये मुट्ठी बंद, मेरे हाथ में अठन्नी है, आप मान लो मैं सच बोलता हूं, फिर भी आपके अंतःकरण में एक बारीक बारीक संदेह होगा, क्या पता अठन्नी होगी, मानते तो बोधू बोधू कहीं फंसे, लेकिन आपको दिखा दिया ए अठन्नी, फिर मुट्ठी में बंद, अब मैंने कहा भी नहीं कि मान लो अठन्नी, आपने जान लिया, आप दुनिया भर के सब लोग आके मिले, 1000 सूरती आ जाए, 2000 अमदावादी आ जाए, 5000 दिल्लीवादी आ जाए, और आपको कह दे कि इनके हाथ में अठन्नी नहीं है, तो क्या आप बहुमति पे चलेंगे क्या? बहुमति का प्रभाव अज्ञान दशा में पड़ता है, ज्ञान दशा में नहीं पड़ता। जय जय, इसीलिए ज्ञानी के चित्त पर बहुमति का प्रभाव नहीं पड़ता, श्रेष्ठ मति सत्य, सत्य का जिसको बोध हो गया उसको सारी दुनिया विरोध में खड़ी हो जाए तभी भी उसका सत्य के बोध में खतरा नहीं है। सारी दुनिया वाह वाह करने लगे तभी इंप्रेस नहीं होता, क्योंकि उसको सत्य साक्षात्कार हो गया। तो बात चली थी ये पांच कोश, इन पांचों कोशों को प्रकाश चैतन्य का मिलता है सत्व वस्तु का, इसी से ये हाड़ मांस रोटी दाल भी चलता फिरता है, प्राण भी चलते हैं, मन भी विचार करता है, बुद्धि भी अपना निर्णय करती है। भोजन जो करते हैं उसमें से तीन हिस्से होते हैं, स्थूल हिस्सा हर रोज त्याग देते सुबह को, मध्यम हिस्सा से मांस पेशी और रक्त बनता है, और उत्तम हिस्सा से मन और बुद्धि का संचय होता है। हकीकत में मन और बुद्धि भी तुम्हारे अन्न और जल से ही बनते हैं। तो ये सब नित्य और अनित्य वस्तु से, सत्व वस्तु से इनका कोई सरोकार नहीं है। तो आप तो मन को प्रसन्न करने में लग गए, बुद्धि को बढ़ाने में लग गए, तो ये भी तो जो पांच भूतों की तो है चीज है। सम्राट ने वैशा के कपड़ों को सजाना कर दिया, सम्राट ने वैशा के घर को सजा दिया, लेकिन सम्राट को पता ही नहीं मैं सम्राट हूं, तो सम्राट काय कर रहा। ऐसे ही अपने को पता ही नहीं मैं चैतन्य वपु मुक्त आत्मा हूं, बुद्धि को सजा दिया, मन को जरा प्रसन्न कर दिया, शरीर को जरा बढ़िया बना दिया, लेकिन आखिर में तो मजूरी मिली। आखिर क्या मिला, तो प्रकृति की चीजें हैं ना, शरीर मन बुद्धि पांच कोश ये सब प्रकृति के हैं ना, तो उसमें मजूरी कर करके आखिर क्या मिला। अपने स्वरूप का बोध नहीं हुआ तो सब धोखा ही धोखा है, सब भूल भुलैया है। लेकिन उस भूल भुलैया में भी जाने के लिए वो लोग तत्पर हैं कि टाइम थे गयो जाइए, कारण के पेलू बगड़े नहीं भाई, केटलू आती चेवटे मृत्यु नो झटको बधु बगाड़ी नाखे, परलय नी हवा बधाने स्वा करी लेशे। नारायण नारायण नारायण। दुनिया के लोग कितना भी सुधार कर करके वस्तुओं का ये उसका, फिर भी अंत में देखो तो बेचारे ठन ठन पाल हो जाते, पछताते हुए मरते, कुछ न कुछ जवाबदारी बाकी रह जाती। अखा भगत ने कहा, अखो कहे अंधारो कुओ झगड़ो मटाड़ी कोई नाम हुओ। आ जगत नो व्यवहार बधो फिट करी व्यवस्थित करीने कोई निश्चिंत थईने मर्यो हो संभव नहीं। निश्चिंत तत्व का जिसको बोध हुआ वही निश्चिंत हुआ, बाकी का तो चल वस्तुओं को निश्चिंत करने में लगा, वो तो लगा ही रहेगा। बोले हा मानस बहु होशियार छे बापू, अरे क्या एटलो बोधो होशियार वकील छे के पहला एनी पासे कोई नतुं, अत्यार तो बे गाड़ी होय। आ एवो मानस तो पहला तो कोई एनु जाण एने जाणतो नतो, अत्यारे बहु प्रसिद्ध छे। अरे तो क्या करा, ये बहु चलतो पुरजो छे। हाँ वात साची भाई, चलता पुरजा है, कई माताओं के गर्भ में ये चलता ही रहेगा, अपने आप में बैठेगा नहीं जल्दी से। जितना आदमी कपटी होता है होशियार उसको बोलते हैं, कपटी को होशियार बोलना बेवकूफी है। संसार की वस्तु बढ़ा के और अहंकार को बढ़ा दिया उसको होशियार बोलना, ये संसारी की नजर है। और इधर उधर कावा दावा करके टांटिया किसी का खींचकर ऊंची कुर्सी पे मिल बैठ गया और उसको होशियार बोला, ये नेताओं की नजर है। समाज में एक दूसरे को पोलसन लगाकर और अपना प्रतिष्ठा जमा लिया उसको किसी ने होशियार कहा, ये सामाजिक व्यक्तियों की नजर है। लेकिन कृष्ण की नजर क्या है, वेद की निगाह क्या है? वेद और कृष्ण और भगवान आपको होशियार तब बोलेंगे कि जाने जीव तब जागा, तुम तभी जगे, हरि पद रुचि विषय विलास विरागा। परमात्मा तत्व में, परमात्मा पद में, परमात्मा स्वरूप को जानने में रुचि है, विषय विलास से विराग है, तब वो आदमी होशियार है, तब वो जगा। अहंकार बढ़ा दिया, वस्तुएं बढ़ा के लोग अहंकार बढ़ाते हैं। अब मैं क्या हूं इसका पता नहीं, इसलिए कुछ न कुछ बन के दिखाने में सब लगे। कोई बड़ा अधिकारी बन के दिखाऊं, बड़ा डॉक्टर बन के दिखाऊं, बड़ा योगी बन के दिखाऊं, बड़ा संत बन के दिखाऊं, बड़ा मकान करके दिखा दूं, ताकि कुछ तो रहे कि दुनिया में आया था, ये कर गया था, लेकिन तू है क्या उसका पता नहीं, इसलिए कुछ न कुछ करके दिखाने में लगे। और तुमने कितना भी बढ़ाया तो तुमसे छोटों के आगे तुम जरा बड़े दिखोगे, अहंकार का सुख होगा। लेकिन तुम्हारे मकान से और किसी का बड़ा मकान दिखेगा तब सुकड़ान भी होगी। तुमने कुर्सी पा ली तो छोटे व्यक्तियों के आगे तुम्हारी कुर्सी का वट रहेगा, लेकिन तुम्हारे से भी किसी की बड़ी कुर्सी होगी तो सुकड़ जाओगे। एक नगरपति है, नगरपति है तो साधारण आदमियों के आगे कॉरपोरेटर वट मारता है और कॉरपोरेटरों के आगे नगरपति पद का वट आता है। लेकिन वो महाराज मिनिस्ट्री में जाता है तो कॉरपोरेटर वहां लेफ्ट राइट लेते रहते गांधीनगर में, कोई वैल्यू ही नहीं। लेकिन वो गांधीनगर के लोग बेचारे फिर दिल्ली में लेफ्ट राइट लेते रहते, जय जय। और फिर उससे भी पोस्ट ऊंची है इंद्र के या और बड़े बड़े राष्ट्र वाले हैं राष्ट्रपति, उनके आगे वो लोग लेफ्ट राइट लेते। अंत में मृत्यु के आगे सब लोग लेफ्ट राइट लेते हैं और मृत्यु भी परमात्मा के आगे लेफ्ट राइट लेता रहता है। वो परमात्मा तुम्हारा आत्मा है तो उसको जान लो ना, सीधा एकदम सीधा कनेक्शन कर लो। कब तक यूं वाया वाया करके अपने को विनाश करोगे? अनंत अनंत यमराज पैदा होकर लीन हो जाते, अनंत अनंत नरक और स्वर्ग बन बन के जिसमें मिट जाते। वो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म तुम्हारा आत्मा अभी तुम्हारे साथ बैठा है, उसको जान लो बस। नहीं तो कितना बड़ा पोस्ट पाया, कितनी बड़ी प्रसिद्धि पाए, लेकिन जिससे पाया जिसका माना जाता है वो शरीर का तो ठिकाना नहीं। मृत्यु का झटका आते ही सब नाम किसका रहा, नाम किस पर रखा था कि दाल रोटी पर? बॉडी पर नाम रखा था जिया, नाम थोपा हुआ है, थोपे हुए नाम के पीछे जिंदगी स्वाहा हो जाती। अब बेवकूफी समझते अपने कुछ पा लिया है। सच्चे ज्ञान के आगे ये सब मिथ्या पोकड़ का पोल खुल जाता है, इसीलिए हम लोग हिप्नोटाइज हो जाते हैं। लड़की जब दुल्हन होती है ना तो उसके पहले गीत गाने बनाकर लाडो लाडी आने को, ऐसी लाडी है मेवाड़ी लाडी, और लाडे को भी हिप्नोटाइज कर दिया जाता है। बच्चा पैदा होता है तब से बेचारा हिप्नोटाइज हो जाता है, तू काला है, तू गोरा है, तू इसका है, अच्छा है, ऐसा है, वैसा है, वैसा है। उसके ब्रेन को बेचारे को बस जंजीरों से जकड़ दिया जाता है। बचपन में अगर वैदिक ज्ञान मिल जाए जैसे मदालसा ने अपने बेटों को दिया तो तुरंत साक्षात्कारी बन गए, कचरा नहीं डाला, एकदम सीधा अमृत आत्मा अमृत दे दिया, ज्ञानी बन गए। हम लोगों के अंदर कचरा बहुत बढ़ गया ना, इसीलिए संतों को बहुत मेहनत करनी पड़ती। और फिर भी थोड़ा सा वो शुद्ध ज्ञान डालते फिर जाते हैं, वो कचरे की पुरानी आदत है, फिर कचरा ही डालेंगे। घर जाएंगे तो मिसिस मिस्टर करेगी, बेटा बाप कहेगा, पिता पुत्र कहेगा, पेशेंट डॉक्टर साहब कहेंगे। और पुरानी आदत फिर पक्का हो जाएगा ये कचरे की बात। हकीकत में कचरा है, अपना शुद्ध नित्य मुक्त आत्मा में तो हजारों डॉक्टर, हजारों वकील, हजारों सृष्टियां पैदा हो के लीन हो गई। ऐसा तुम हो हकीकत में, काका मटिन भतरीजा था उसे। अमर होकर तुम मरण धर्मा हो रहे, नित्य होकर तुम अनित्य की गुलामी कर रहे, शाश्वत होकर तुम नश्वर की गुलामी में अपने को बेच रहे। हकीकत में आपसे धोखा है ये। तुम एक दिन के 1 करोड़ भी कमा लेते हो तभी भी हकीकत में ये तुम्हारा मूल्य नहीं है। एक दिन का 1 करोड़ तुम्हारी आय हो जाए फिर भी तुम्हारे से धोखा है। एक दिन में 1 करोड़ तुम्हारे चाकर बन जाए, सेवक बन जाए, शिष्य बन जाए, तभी भी वास्तविक में तुम्हारे से ही धोखा है, तुमने कुछ नहीं कमाया। बोले एक दिन में 1 करोड़ रुपया कमाते कुछ नहीं कमाया, कि नहीं भैया तुमने कुछ नहीं कमाया, तुम्हारा धोखा बड़ा, बेवकूफी कमाया, अपने ऊपर पर्दे डालने का कचरा कमाया तुमने, अपने को ढकने का कचरा कमाया, अपने को जानने का प्रकाश नहीं कमाया। और ब्रह्मवेताओं के द्वार पर तुम कोपिन पहर के रहते हो, भिक्षा मांग के एक टंग भोजन करते हो, और अपने आत्मा का ज्ञान के संस्कार तुमको मिल रहे। तुमने हजारों बाप से जो नहीं पाया, हजारों माताओं से नहीं पाया, लाखों मित्रों से लाखों जन्मों में नहीं पाया, वो खजाना तुम पा लो। वो खजाना पा लो, आत्मविद्या ऐसा खजाना है। देखा अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारों में, खुद पे मस्ताना हो गया। आपका इतना मस्त स्वरूप है, आप इतना अमर आत्मा हो कि फिर तुम्हारे को स्वर्ग का सुख सुख नहीं दिखेगा, नरक का दुख दुख नहीं दिखेगा, सब तुच्छ हो जाएगा। नित्य अनित्य दोनों तुम्हारे प्रकाश से प्रकाशित है, तुम्हारी चेतना से उनको चेतना है। पृथ्वी में रस तुम्हारा है, सूरज में ओज तुम्हारा है, चंदा में चांदनी तुम्हारी है, जल में रस तुम्हारा है, स्वर्ग में इंद्र जो आधिपत्य भोग रहा है, इंद्र में चेतना तुम्हारे आत्मदेव की, ऐसी तुम्हें अमरता की अनुभूति हो जाएगी। फिर तो इंद्र भी तुम्हारे सेवक की भी सेवा करके अपना पुण्य बढ़ा लेगा। भृगु ऋषि का शिष्य शुक्राचार्य जब स्वर्ग में गए तो इंद्र आसन से उतर के शुक्राचार्य का पूजन किया कि आप तो ब्रह्मवेत्ता का साक्षात्कार पुरुष का शिष्य है, तो आपकी चाकरी करने से हमारा आज स्वर्ग पवित्र हुआ। ऐसा है, तुम्हारा आत्मा ऐसा महान है। हकीकत में यह भी शुद्ध उपदेश नहीं है, तुम्हारा आत्मा ऐसा महान है। हकीकत में तुम और तुम्हारा आत्मा दो नहीं है, लेकिन उल्टा ज्ञान ज्यादा पढ़ा है तो ये सच्चा ज्ञान भी उल्टे ढंग से समझाया पड़ता है। तुम इतने महान हो कहना ये चाहिए, लेकिन तुम महान हो तो आ जाएगा कि मैं कहां महान हूं, मैं तो भाई मिनिस्टर हूं, केवल गुजरात का अमुक खाता ही मेरा है, महान तो केंद्र वाले, महान तो वो हैं, तुम फिर वहां नहीं लिपस जाओ, उसलिए कहना पड़ता है। प्रभु आपकी दया होगी। अरे भैया ये हमारी दया कहाँ, हमारी दया होता तो तुमको अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता, ये तो हमारी माया की हमारी दासी की दया है। नारायण 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 नारायण, अपने स्वरूप का ज्ञान मिल जाए बहुत बड़ी चीज है। अपने स्वरूप का ज्ञान की जिज्ञासा होनी चाहिए, श्रद्धा बुद्धि जिज्ञासा और ब्रह्मवेत्ता गुरु। जिज्ञासा भी है, श्रद्धा भी है, बुद्धि भी है, लेकिन जगा हुआ पुरुष नहीं मिलेगा तो जिज्ञासा ठप हो जाएगी, और ब्रह्मवेत्ता मिल जाएगा तो जिज्ञासा जगा भी देगा, श्रद्धा जगा भी देगा, बुद्धि को विकसित भी कर देगा ब्रह्मवेत्ता का सानिध्य। और स्वामी विवेकानंद सही कहते थे कि दुनिया के सब धर्म ग्रंथ रसातल में चले जाए, सब मंदिर मस्जिद गिरजाघर ये सब रसातल में चले जाए, फिर भी जब तक एक ब्रह्मवेत्ता पृथ्वी पे है और एक उसका सत्शिष्य है तो शास्त्र फिर से पैदा हो जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मवेत्ता की अनुभूति वो बोलेगा, शिष्य के कल्याण के लिए शास्त्र बन जाएंगे। एक एक साक्षात्कारी पुरुष जमीन पर रहे, सारे शास्त्र धर्म ग्रंथ समझो कि लोप हो गए, एक साक्षात्कारी पुरुष रहे और एक उसका सत्पात्र शिष्य रहे, धर्म ग्रंथ फिर से बन जाएंगे। ये अमित तत्व है। इसी अमित तत्व से ही तो सारे ज्ञान आते हैं, डॉक्टरी का ज्ञान, वकीलात का ज्ञान, ये वो अज्ञान के रंग से ढका हुआ जो भी संसार में लोग ज्ञान मानते वो भी तो इसी आत्मदेव से निकलता है। जो पुस्तक पढ़ के आप विद्वान हुए वो पुस्तक भी तो किसी किसी के तो अंतःकरण से स्फुरित हुए होंगे, वो सिद्धांत, वो रिसर्च, और रिसर्च सफल होना, ये आइंस्टीन का ज्ञान, ये उसका उसका, ये भी तो किसी अंतःकरण से स्फुरित हुआ है। तो तीसरा केंद्र अगर 10% विकसित हो जाता है तीसरा शरीर, तो आइंस्टीन जैसी योग्यता आ जाती है, लेकिन वो सब ऐहिक जगत में खलास हो गए। तो चौथा केंद्र विकसित हो तो इनसे जो भी कुछ नहीं उपलब्ध हुआ उससे वो चौथे केंद्र से उपलब्ध होता है। ऐसे शरीर में 7 केंद्र है, योग सीखने से 7 केंद्र जितने अंश में विकसित होते हैं उतना आदमी महान हो जाता है। कुंडलनी योग के 7 केंद्र होते हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र और शस्त्र साथ। जितने जितने परसेंट, साधारण आदमी के 2-3% विकसित होते हैं ये नीचे के केंद्र ही, इसीलिए काम आया तो काम ही हो गए, लोभ आया तो लोभी हो गए, भय आया तो भयभीत हो गए, चिंता आई तो चिंतित हो गए। ये 3 केंद्र ऐसे, चौथा केंद्र में जरा भक्ति का रस प्रकट, 5वें केंद्र में ज्ञान की धारा होगी, छठे केंद्र में सामर्थ्य और सातवें केंद्र में तत्व वस्तु में प्रतिष्ठित हो जाता है। ये योग की प्रक्रिया है और तत्व ज्ञान की तो एकदम सीधी प्रक्रिया है। योग तो यूं करके जाता है पहाड़ पे और तत्व ज्ञान तो यूं जाता है, भक्ति भी जाती है पगडंडी करते करते। कर्मी तो उस शिखर को देखते ही नहीं, उसी तलेटी में उलझते हैं, उनको तो शिखर दिखता ही नहीं। शिखर पे चढ़े हुए व्यक्तियों को छोटा मानते हैं, ये क्या ऊपर बेचारे क्या खाते होंगे नीचे तो खूब है उनको देखने को। ऐसे जो संसार में उलझे हैं भोगों में, उसको तो भक्ति वाले ऐसे ही लगेंगे। और तुम जितने थोड़े ऊंचे उठोगे ना, तो तुम्हारे जो फ्रेंडशिप है, तुम्हारा जो सर्कल है ना, अपने हृदय में तुमको ऐसे ही मानेगा क्या बेचारा ने कह, और तुमको वो बेचारे लगेंगे उनको तुम बेचारे लगोगे, क्यों जगत भगत का तो डायरेक्शन अलग है। भगत जगत तो यूं जा रहा है, कभी वृक्ष बनने के और पशु बनने के तरफ जा रहा है भोगी आदमी, और योगी तो ईश्वर के तरफ जा रहा है। तो योगी और भोगी में, जगत और भगत में मेड़ज नहीं। मीरा ने राणा नो जुओ, शबरी ने ना बाप नो जुओ, प्रहलाद ने ना बाप नो जुओ, भरत नो सम्राट भरतरी ने ना बहिरा नो जुओ, बहिरू पेली दिशा मने पति पेली दिशा। कभी कोई मिलके भी चलेगा तो थोड़ा समय तक साथ देगा, बाद में नहीं। आप तेजी से बढ़ेंगे तो वो फिर आपका पैर पकड़ेगा, गिरा देगा। इसलिए ये कई संप्रदाय, ये बहुमति का रास्ता नहीं है, ये सामाजिक रास्ता नहीं है, ये सामाजिक रास्ता नहीं है, ये भोगियों का रास्ता नहीं है। इसमें तो कोई कोई मायके लाल हजारों हजारों में कोई बिरला ही टॉप की यात्रा कर सकता है। इसलिए गीता का ने कहा, मनुष्याणाम शास्त्रेषु कश्चित् एतदि सिद्धये, हजारों मनुष्यों में कोई सिद्धि को पाता है। यततां अपि सिद्धानां, सिद्धि तो आ जाता है लेकिन उन सिद्धों में भी कोई विरला ही मुझे तत्व से जानता है। सिद्धि सिद्धि मिल जाती है, कुछ योग्यताएं मिल जाती है, उसी में आदमी फिर रुक जाता है। योग्यताएं भी नित्य अनित्य वस्तु में होती है, सत वस्तु में नहीं होती। सत एकदम टॉप है, उसके आगे तो ये तुम्हारा पांच भूत और स्वर्ग और ब्रह्मलोक कुछ भी नहीं। ऐसा आत्म साक्षात्कार का प्रभाव। यक्ष गंधर्व किन्नर उनके पास भी विलास के भोग के बहुत साधन है, लेकिन वो सब तुम्हारे कृपा के पात्र हो जाएंगे। गंधर्वों के पास ऐसे विमान होते कि एक संकल्प करे तो इधर आ जाते, दूसरे संकल्प से उनका विमान गुरुत्व आकर्षण नियम के पार चला जाता है। तुम्हारा फ्यूल वाला विमान उसके आगे कुछ भी नहीं होता, सेवन सेवन कुछ नहीं होता, बोइंग कुछ नहीं होता, रॉकेट कुछ नहीं होता। ऐसा तो गंधर्वों के पास विमान होते, लेकिन वो गंधर्व भी आत्मदेव की जिज्ञासा नहीं करते, इसीलिए उनको भी धिक्कार है।